Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Asti Tevo Palapthas Tattva Bhavena Chovayoho अस्तित्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ए अस्य हृदि स्थिताः, अथ मर्त्यो अमृतो भवति, अत्र ब्रह्म समुष्णुते। तत्त्वज्ञान आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधक जब साधना करता है तो सबसे पहले उस तत्व को जानने के लिए जीवन में जिन साधनों का होना आवश्यक है उन साधनों को जीवन में ले आने का वो प्रयत्न करता है। हमारे पास उस तत्व को जानने के लिए एकमात्र उपाय है तद्विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। तद्विज्ञानार्थम आत्मविज्ञानार्थम परमात्मविज्ञानार्थम तत्वविज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत्, गुरु की ही शरण जाए। और कैसे जाए तो कहा समित पाणी ही। समित पाणी का अर्थ है हाथ में समिधा लेकर, माने खाली न जाए। ये समित पाणी होना एक समर्पण का प्रतीक है। समित पाणी माने विनम्रता, तितिक्षुता, मुमुक्षुता, यम दम श्रद्धा आदि साधनों का समूह लेकर। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में भी बोला तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। वहां भी भगवान ने बोला विद्धि प्रणिपात, सबसे पहले प्रणाम करो। और ये प्रणाम समर्पण है, ये स्वीकृति है, ये श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। यदि हमारे अंदर श्रद्धा होगी तो स्वीकृति होगी। सत्य की स्वीकृति जिसके संदर्भ में गुरु आपको उपदेश कर रहे हैं उस पर श्रद्धा नहीं होगी तो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद भगवान ने कहा फिर सेवा, सेवा के बाद फिर परिप्रश्न, ये सारी चीजें तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के साधन हैं। ये प्रश्न पूछना भी साधन है। हमारे अंदर प्रश्न उठे, ये प्रश्न उठना आध्यात्मिक साधना की सीढ़ी, प्रथम सीढ़ी है। प्रश्न माने प्यास है, प्रश्न माने भूख है। आप समझना चाहते हैं, कोई समस्या आपके अंदर पैदा हो गई है और समस्या पैदा हुए बिना समाधान खोजने का कोई उपाय नहीं है। हम समाधान इसलिए नहीं खोज पाते क्योंकि अभी वो समस्या ही पैदा नहीं हुई है। जैसे आपका सिर दुखना शुरू हो जाता है, एक प्रश्न है, एक समस्या है, और उस समस्या का समाधान आपको मालूम है, औषधि है, डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, और वहां जाके आप उस समस्या का समाधान प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे प्रश्न एक समस्या है और उसका जो समाधान है ना गुरु है। इसलिए जब आप समस्या लेकर एक पीड़ा है, प्रश्न एक पीड़ा है। मीरा के मन में प्रश्न उठा, चैतन्य महाप्रभु की के मन में प्रश्न उठा, बड़े बड़े साधकों के मन में प्रश्न उठा, बालक नचिकेता के मन में प्रश्न उठा, और इस प्रश्न को लेकर ही तो गुरु के पास गए। एक पीड़ा है, और तभी तो साधक श्रम करेगा, परिश्रम करेगा उस तत्व को जानने के लिए। और वहां जाने के बाद दो प्रकार से गुरु उपदेश करते हैं, मार्ग दिखाते हैं तत्व का, एक परोक्ष विद्या और दूसरा अपरोक्ष विद्या। शास्त्र ने प्रतिपादन किया है वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जब राजा परीक्षित गए सुखदेव जी महाराज जी के पास, सुखदेव जी महाराज जी आए राजा परीक्षित जी के पास, ये दो ही उपाय, या तो गुरु के पास हम जाए या तो गुरु हमारे पास आए। और नारद जी महाराज जी को भी मिले सनकादि बद्री नारायण में, और नारद जी महाराज जी ने अपने मन की पीड़ा रख दी। उन्होंने कहा कि मानव मात्र के जीवन में मैं ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रचार करना चाहता हूं, समाज सुधार की अवधारणा है, समाज को दिशा देने की चिंता है, तो सबसे पहले आश्वस्त किया सनकादियों ने। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षे चित्तम सुखावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व ये वही। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, उपाय हैं अस्ति। और जैसे अस्ति सुना तो बहुत प्रसन्न हो गए। आप डॉक्टर के पास जाएं और आपको डॉक्टर देख करके बोले कि कोई रोग नहीं है, तो ये सुनकर के आपको तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है, लेकिन कई बार बुरा भी लगता है। हमारे सामने डॉक्टर बैठे हैं। एक बार मैं बहुत लंबा बीमार था, जब वृंदावन में एकांतवास करता था लंबे समय, और फिर बुखार आने लगा, तो किसी भी डॉक्टर के पास मैं जाता देखता, और जो डॉक्टर बोलता है हाँ बुखार तो है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मेरे को लगता था कि इन्होंने पहचान लिया। और कोई डॉक्टर बोलता है ये बुखार उखार कुछ नहीं, मन का भ्रम है स्वामी जी, मन से उतार दो, मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मेरे को लगता था कि इसको मालूम नहीं है, है बुखार मेरे को, मैं आधा किलोमीटर भी चल नहीं सकता हूं, बहुत जल्दी थक जाता हूं। उसका कारण क्या है? सुबह, और ये दिन में एक आधा बार होता है ऐसा, तो रोग की स्वीकृति कई बार रोगी के मन में आश्वस्ति पैदा करती है कि डॉक्टर को मालूम पड़ गया कि ये रोग है और ये अब जरूर ठीक करें। इसलिए बता दिया सनकादियों ने, अस्ति है बोले, उपाय हैं। और बोली वो उपाय केवल मैं ही जानता हूं ऐसा नहीं है, अरे बोली बहुत पुराना उपाय है, पूरो ये वही। मैंने उसको और प्रामाणिक बना दिया। गुरु के पास जाने के बाद गुरु ने आपको बता दिया भगवान है, जन्माद्यश्चेतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंशन्ति तद्ब्रह्म विजिज्ञासस्व। गुरु ने बताया कि वो है, वो सत हैं, चित हैं, आनंद हैं। ये सबसे पहला जो उपदेश है ना, ये अस्तित्व का उपदेश है। अस्ति इति उपलब्धव्य। गुरु के पास जाकर सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि वो है। समाज में तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक आस्तिक, दूसरे नास्तिक और तीसरे जिज्ञासु। आस्तिक का मतलब होता है तत्व के बारे में जानते हैं कि वो है, उसके अस्तित्व पर भरोसा है, भगवान है, अभी देखा नहीं है, वो काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, हमने अपने आंखों से देखा नहीं, केवल सुना है और जैसा सुना वैसा मान लिया है, और ये मानने के लिए श्रद्धा की जरूरत पड़ती है। आपके अंतःकरण में, हृदय में श्रद्धा है गुरु के वचनों के प्रति, और आपने जैसे शास्त्रों ने कहा, गुरु ने कहा, वैसा आपने मान लिया, श्रद्धैक चक्षुषा मान लिया, आपने केवल आपने मान लिया, मान लिया है ना। और दूसरा जो भाव है ना, वो है नास्तिक। नास्तिक माने नहीं है, उसने सुना लेकिन स्वीकार नहीं किया कि वो भगवान है। अरे बोले कहां है, दिखाई तो देता नहीं। और ये नेचर है, प्रकृति है, बोले उससे परे कोई तत्व नहीं है, और उसके मन में निश्चय है कि नहीं है। अच्छा, वो नहीं है ये जो नास्तिक सोचता है, वो श्रद्धा है कि अनुभूति है? भाई वो नहीं है ये बात वो जो जानता है, तो उसने क्या खोजा, क्या क्या बहुत ज्यादा विचार किया, बहुत कुछ देखा और उस निर्णय तक पहुंचा कि वो नहीं है? ऐसा नहीं है, वो भी श्रद्धा है। उसने मान लिया नहीं है ये, मान लिया, बिना खोजे मान लिया। आस्तिक भी ईश्वर को मानता है बिना खोजे। आपने कभी खोजा क्या ईमानदारी से? आपके माता पिता ने, गुरु ने, शास्त्रों ने बोला वो भगवान है और आपने मान लिया, लेकिन कभी आपने खोजा? जप में, ध्यान में, समाधि में, योग में, धर्म में, श्रवण में, निधिध्यासन में, अपने में, बाहर कहीं आपने भगवान को खोजा क्या? नहीं खोजा, मान लिया वो है। श्रद्धा की दृष्टि से आपने मान लिया। और एक नास्तिक व्यक्ति भी मानता है वो नहीं है, उसने खोजा? नहीं खोजा, उसने भी मान लिया। किसी की सुना, कोई पुस्तक पढ़ी, वो नहीं है तो मान लिया नहीं है। आदमी जैसे सुनता है, आदमी जैसे पढ़ता है ना, वैसे भी कई बार मान्यताएं बन जाती हैं। खोजा नहीं उसने भी, आस्तिक में भी नहीं, आस्तिक ने भी नहीं खोजा और नास्तिक ने भी नहीं खोजा और मान लिया वो है, ये श्रद्धा है। इसलिए आस्तिक होना भी श्रद्धा है और नास्तिक होना भी श्रद्धा है। लेकिन जब नहीं मानते हैं ना, तो आप नहीं की तरफ बढ़ते हैं, आप नकारात्मकता की तरफ बढ़ते हैं, और जब आप है सोचते हैं तो आप सकारात्मक हो जाते हैं, सकारात्मक। इसलिए नास्तिक होने की अपेक्षा आस्तिक होना श्रेष्ठ है। दोनों श्रद्धा है, लेकिन आस्तिक होना श्रेष्ठ है, क्योंकि ईश्वर को मानने के फायदे बहुत हैं, उसको मानने के बहुत फायदे, नहीं मानने के कोई फायदे नहीं है, मानने के फायदे हैं। आप उसको मान के अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, ईश्वर को नहीं मान के बदलने का क्या उपाय? कोई उपाय नहीं, मानना ये कोई उपाय नहीं बदलने का। ईश्वर को मानकर बहुत सारी चीजें बदलती हैं, जीवन बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, आदमी के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और इससे भी परे एक चीज है, जो है वो जिज्ञासु। आस्तिक से अच्छा, नास्तिक से अच्छा आस्तिक, और आस्तिक से भी अच्छा है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब है कि वो जानना चाहता है खोज के। जिज्ञासु माने केवल शास्त्र की बात सुनकर मानना नहीं चाहता है, वो है। जब बालक नचिकेता यम के पास पहुंचे, तो बहुत प्रश्न बड़ा सुंदर पूछा उन्होंने, अस्तित्य के नायम अस्तित्व चैके। कुछ लोग बोलते हैं वो है और कुछ लोग बोलते हैं वो नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि वो है कि नहीं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं वो है भाई है। और ये दुनिया के जितने भी झगड़े हैं ना इसी में है। दुनिया के जितने भी झगड़े हैं धर्म को लेकर, विचारों को लेकर, सिद्धांतों को लेकर, पद्धतियों को लेकर, परंपराओं को लेकर, वो सारे झगड़े इसी आस्तिकता में हैं। क्योंकि खोजा तो है नहीं और केवल सुन करके मान लिया। अब वहां पर जो माना वो माना, अंधविश्वास होगा ना वहां, और वो ऐसा मानेगा कि वो बिल्कुल अंधे की तरह। वो बोलेगा कि भैया वो आपने सुना ना कि कई अंधे लोग मिलकर कल्पना कर रहे थे हाथी कैसा होता होगा। किसी ने सूंड देखा तो मान लिया कि हाथी कैसा है, सूंड की तरह। किसी ने पैर पकड़ा, पैर के ओहो बोले हाँ ये हाथी हैं। और किसी के हाथ में पूंछ आ गई तो उसने क्या मान लिया, ओहो ये ऐसा है। और किसी को आप हाथ पेट में चला गया, वो बोले इतना है? और उसके बाद फिर वो एक जगह पर बैठेंगे अंधे और आपस में जब विचार करेंगे तो क्या विचार करेंगे। और एक बोलेगा कि भैया वो पैर की तरह हैं, कोई बोलेगा सूंड की तरह, और वो झगड़ा भी करेंगे, वो आपस में संघर्ष भी करेंगे। ये दुनिया के जितने संघर्ष हैं धर्मों को लेकर, ये सब आस्तिकता में, आस्तिकता में। क्योंकि आस्तिक व्यक्ति सुन करके मान लेता है ऐसा ही है, और वो दूसरे को मानने को तैयार नहीं है, दूसरे की मान्यता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। ओ हमारी मान्यता श्रेष्ठ है। लेकिन जो जिज्ञासु होता है ना वो संघर्ष में उलझता नहीं है। यम के पास जब नचिकेता गए तो उन्होंने ये नहीं बोला कि वो है और ये भी नहीं बोला कि वो नहीं है। वो बहुत वैज्ञानिक व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि लोग बोलते हैं, लोग बोलते, मैं नहीं बोलता हूं, हमने ऐसा सुना है कुछ लोग बोलते हैं वो है और कुछ लोग बोलते हैं वो नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि वो है कि नहीं। मैं जानना ये नचिकेता की सबसे बड़ी विशेषता है। नचिकेता ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि वो है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि है तो ठीक है, मैं देख लूंगा, उसको खोज के देखूंगा वो है। अच्छा, और खोजने के बाद ये मालूम पड़ा वो नहीं है, वो तो ठीक है, अपने को तो जानना है कि वो है कि नहीं है। कोई आदमी जानना चाहता है कि मधु बाबू यहां पर आए हैं कि नहीं प्रेमपुरी में, और वो आकर के देख लेता है, वो ऑफिस में देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, इधर उधर देखा और इस निर्णय तक पहुंचा कि वो है। और वो इस निर्णय पर भी पहुंच सकता है कि आज वो नहीं आए हैं। तो यथार्थ प्रामाणिक बोध के लिए नचिकेता पूछ रहे हैं कि वो है कि नहीं। विवेकानंद जी महाराज जी रामकृष्ण परमहंस के पास गए ना, तो उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा कि भगवान है कि नहीं, और आपने देखा है क्या, आपने भगवान को देखा है। ये आस्तिक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, क्योंकि आस्तिक व्यक्ति को संदेह नहीं होता है। ये संदेह तो जिज्ञासु को होता है, और संदेह होना ये बुरा नहीं है। कई बार संदेह आपके उन्नति के प्रति कारण बनता है, खोज के प्रति कारण बनता है। खोजने के लिए आस्तिक की अपेक्षा संदिग्ध होना ज्यादा जरूरी है। इसलिए आस्तिक व्यक्ति कभी खोजता नहीं है, जो संदिग्ध है ना वो खोजता है कि नहीं। विवेकानंद जी ने कहा वो है, आपने देखा है क्या। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा हाँ मैंने देखा है, तो देखा है तो बताओ फिर। यत् पश्यसि तद् वदा। वहां पर भी आचार्य यम को जब पूछा वो है कि नहीं, गर्दन हिला दी, बता दिया उन्होंने थोड़ा गर्दन हिला के इशारा कर दिया। हाँ हाँ बोले, तो बोले यत पश्यसि तद वद। बोले सुनी सुनाई बात मत सुनाना हमको, सुनी सुनाई बात आप सुनाओगे तो उससे भी ज्यादा तो हम भी सुना सकते हैं आपको। हाँ, नचिकेता ने बहुत गहरा एक सूत्र श्लोक बोला है, धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद् वद। बोले आप सुनी सुनाई बात सुनाओगे, अरे बोले हम भी सुना देंगे आपको सुनी सुनाई बात। वो धर्म से भी परे हैं, अधर्म से भी परे हैं, कार्य और कारण के संघात से भी परे हैं, वो मैं जानता हूं, सुना हूं, मैंने भी सुना है। लेकिन मेरे में और आप में इतना अंतर होना चाहिए कि मैंने सुना है और आपने देखा है, तभी तो गुरु और शिष्य। भाई शिष्य है तो केवल सुना हुआ है, शिष्य को सुना हुआ होना चाहिए, हाँ, और गुरु को देखा हुआ होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला कि सुनी हुई बातें तो मेरे पास भी बहुत हैं, वो नहीं चाहिए। यत पश्यसि, जो आपका अनुभव है, यही बात विवेकानंद जी महाराज ने बोली वहां, बोले आपने देखा है, वो मैं भी देखना चाहता हूं। तो ये जिज्ञासु होना है, ये अपने मन को संदेहशील बनाकर भगवान की खोज की जो मनोवृत्ति है वही जिज्ञासु है। और ये बहुत बड़ा उपाय है आत्मज्ञान को प्राप्त करने का उपाय। जब आपको गुरु ने कहा अस्ति, हाँ, तो आपने मान लिया। और वो कैसे माना, देखो माने बिना आप आगे कैसे बढ़ोगे, एक उपाय है, आप या तो आस्तिक बन के खोजो या जिज्ञासु बन के खोजो। खोज के मूल में ये दोनों बातें हैं, आस्तिक होंगे तो भी आप खोजोगे, थोड़ा धीरे धीरे खोजोगे, और जिज्ञासु होंगे तो थोड़ा सक्रिय होकर खोजोगे, वेदना संवेदना पूर्वक खोजोगे। बोध हुआ वो है, ये आस्तिकता का बोध, ये परोक्ष ज्ञान बोलते इसको। जब आप गुरु के पास जाएंगे और वो मार्ग बताएंगे तो वो जो मार्ग है वो परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, वो ब्रह्म है, भाई ईश्वर है। आपने पूछा क्या भगवान है, तो सामने वाले ने बोला भगवान है, आत्मा है, परमात्मा है, केवल अस्तित्व का बोध है। और उसके बाद फिर आपने मनन किया, निधिध्यासन साधना, धीरे 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 आपको बोध हो गया तत्वमसि, जो वो तत्व है ना वो तुम हो, जो तुम हो वो है, और ये सारी जो दुनिया है वो वही है। ये जितने भी आकार दिखाई दे रहे हैं वो भी वही है। भगवान ने बोला मया ततमिदं सर्वम, ये सर्व जो है ना वो मेरा ही रूप है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। ये आपको फिर मालूम पड़ गया, अपनी दृष्टि से मालूम पड़ा, जो सुनी हुई चीज थी वो आपकी अनुभूति बन गई, ये अपरोक्ष बोध है। जैसे अर्जुन को भगवान ने परोक्ष ज्ञान दिया नारायण, वो परोक्ष ज्ञान यही था, विभूतियों का प्रतिपादन किया, भगवान ने कहा मैं ये हूं सातवें अध्याय में, और दसवें अध्याय में भी प्रतिपादन किया। तो अर्जुन ने पूछा कि आप सुना तो रहे हो, ये तो सुनी सुनाई बात परोक्ष ज्ञान है, मैं उसको अपरोक्ष देखना चाहता हूं, अपरोक्ष प्रत्यक्ष देखना चाहता अपनी आंखों से। तो भगवान ने फिर दिखा दिया, और ग्यारहवें अध्याय में विभूति सुनानी, दसवें में तो सुना और ग्यारह में दिखा दिया भगवान। वो देखा उसने, अर्जुन देख रहा था ये सारी दुनिया भगवान का ही रूप है, विश्व, ये सारा विश्व भगवान का रूप है, कण कण में, देश काल और ये दुनिया की जितनी दिखाई दे रहे वस्तु भाव अंदर बाहर सब कुछ भगवान है। बोध हो गया, ये अपरोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान के पहले परोक्ष ज्ञान है। ये दो बातें इस श्लोक में बताई है नारायण। पहले परोक्ष ज्ञान बताया और फिर अपरोक्ष ज्ञान बताया। केवल अस्ति इत्येव उपलब्धव्यः, वो है इतना पहले जान लेना चाहिए परोक्ष ज्ञान। और तत्व भावेन चोभयो, और वो तत्वतः, और वो जो फिर उपलब्धि के प्रति कारण बनेगा, अस्ति एव उपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति। आपको जब परोक्ष ज्ञान हो जाता है तो अपरोक्ष होने में विलंब नहीं है। आपको विलंब परोक्ष ज्ञान होने में, अपरोक्ष ज्ञान होने में नहीं है। मैं आपको एक पहले प्रश्न पूछ लेता हूं इस चीज को समझने के लिए। भगवान का अभी हम लोगों को परोक्ष ज्ञान है कि अपरोक्ष ज्ञान है? थोड़ा गर्दन हिलाओ या बोलो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परोक्ष ज्ञान है। और फिर साधना करते 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 धीरे कौन सा ज्ञान होगा? फिर अपरोक्ष। लेकिन परोक्ष जिसको बोलते हैं ना, वो क्या है? परोक्ष ज्ञान क्या है? परोक्ष का अर्थ है अस्तित्व की गहरी अनुभूति। वो है, वो है, ये जो बोध है ना, बोध है, उसको परोक्ष बोलते हैं। और वो परोक्ष बोध अस्तित्व का हमारे जीवन में परिवर्तनकारी है। जैसे एक बात बता देता हूं, आजकल ये खुफिया कैमरे आए हैं ना, प्रेमपुरी में भी कैमरे लगे हुए हैं। आप जिधर भी जाओगे तो आप कैमरे की नजर में हैं। आप जिधर भी जाओ, जिधर भी घूमो तो कैमरे की नजर में हैं आप। आप कमरे के बाहर निकलते ही हमारे मधु बाबू जी को मालूम पड़ जाता है कि स्वामी जी बाहर निकले। अब उनको बाहर आने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में बैठे हैं और वहीं से उनको मालूम पड़ जाता है। मालूम पड़ जाता है। और ये बात मेरे को मालूम नहीं है तो कैसा होगा व्यवहार? और मेरे को मालूम हो गया कि यहां कैमरा है। देखो ये दृष्टांत बहुत सुंदर है भगवान की परोक्ष बोध को समझने के लिए। आप कमरे में हैं, दरवाजा बंद है, लेकिन आपको मालूम है कि मेरे कमरे में कोई कैमरा नहीं है। लेकिन आपको अचानक मालूम पड़ गया कि आपके कमरे में कैमरा लगा है और उसका जो प्रदर्शन है वो कहां हो रहा है। फिर आप कमरे में कैसे रहोगे मेरे को बताओ? आप अकेले होंगे तो थोड़ा उश्रंखल भी होंगे, आप अकेले होंगे तो टेढ़ा मेढ़ा भी बैठेंगे, कैसे भी सोएंगे, कैसे भी कपड़े हो या ना हो अपने हिसाब से आदमी जाएगा। और जब मालूम पड़ जाए कि उसके अंदर कैमरा है तो अरे बहुत सावधान। फिर आप बहुत सारी चीजें करने से बचेंगे। मान लो कि चोरी करने की इच्छा हो गई थोड़ा, कोई वो चीज उठाने के लिए देखा, ओ अरे कैमरा है। एक बार कोई एक आदमी उठ पटा उछलने कूदने लगा, अरे मैंने कहा कैमरा है, उछलो कूदो मत कैमरा है ये। तो आपकी उछल कूद पर नियंत्रण हो गया ना, मालूम पड़ गया कैमरा है। आपके घर में बड़ा व्यक्ति हो ना, भले ही हमने देखा नहीं लेकिन है, घर के जितने भी लोग हैं वो अलग ढंग से जीतते हैं। फिर ओ है बाबूजी हैं घर में, अरे अभी देखा नहीं है, केवल मालूम पड़ा, ओहो अंदाजा, वो नहीं भी है, नहीं भी है, लेकिन मालूम पड़ा कि वो है। आदमी अनुशासित रहता है। और शाम को मालूम पड़ा कि चिमन भाई लेट आ गए, चिमन भाई लेट आ गए, चिमन भाई नहीं है। अरे हमको तो मालूम ही नहीं था, चार घंटे से हम यही समझ रहे थे कि वो है। और वो चार घंटे का जो हमारा जो समय था ना, वो वैसे ही हो रहा था अनुशासन में। और चार घंटे के बाद मालूम पड़ा कि आपने, अरे नहीं है ये, मालूम पड़ते ही मुक्त होना शुरू हो जाते हैं हम, फिर अनुशासन भंग हो जाता है फिर अपने आप। ये परोक्ष ज्ञान है, आपको मालूम पड़ा वो हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, हमने देखा नहीं है अभी, वो कैसा है, कहां खड़ा है, कहां से देख रहा है, अपने को मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम हुआ कि वो है, भगवान है। और मालूम होते ही हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। हमारा जो मन है ना, ये उछल कूद सब कुछ करना बंद कर देता है। आपको एक दृष्टांत सुना देता हूं।